समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीच।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है स्थायी भविष्य के लिए अपशिष्ट प्रबंधन। बेहतर और सतत विकास के लिए कचरा प्रबंधन किसी भी स्वस्थ पर्यावरण का हिस्सा है। ये पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करने और हमारे संसाधनों की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। मानव स्वास्थ्य और संसाधन की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि ये हमें खतरनाक सामग्रियों और रासायनिक कचरे से बचने में मदद करता है। भारत की एक तिहाई आबादी शहरों और कस्बों में रहती है, जिससे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा चिंताजनक है। कचरे के इस विशाल प्रवाह ने गंभीर चुनौतियां पैदा कर दी हैं। अब इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, और वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उसके क्या कारण हैं, चुनौतियां क्या हैं और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंटरनेशनल सर्कुलर इकोनॉमी एक्सपर्ट स्वाति सिंह सांब्यार और टेरी के डॉक्टर सुनील पांडे भी जो है इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
धन्यवाद।
श्रोताओं, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2331444 और 2323421050 पर फोन कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं, और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। स्वाति जी, आप ही से शुरू करें। जैसा आज हमारा टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट, जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज वेस्ट मैनेजमेंट, वो क्या है, क्यों जरूरी है और कितने प्रकार का होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया लवलीन जी। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा प्रबंधन की बात करें और कचरा कितने प्रकार का होता है, देखा जाए तो जो आप अगर घर में रहते हैं और आपके घर से जो भी रिजेक्ट है, जैसे कि आपने फल खाया उसका जो पील है वो एक ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ, आपने चिप्स खाए उसका जो पैकेट है वो एक तरह का प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट हुआ, आपने एग भुर्जी बनाई जो अंडे के शेल्स हैं वो एक तरह का कचरा हुआ, आपने अपने रिमोट की बैटरी चेंज की वो जो रिजेक्ट बैटरी है वो एक तरह का कचरा हुआ, जैसे कि हम डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट कहते हैं
जी।
तो ब्रॉडली जो हमारे घरों से निकलने वाला कचरा होता है वो तीन प्रकार का होता है, बायोडिग्रेडेबल या ऑर्गेनिक वेस्ट, ड्राई वेस्ट या रिसाइक्लेबल वेस्ट और हमारा डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट
जी। और इस बीच दिल्ली से धर्मवीर इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो
हेलो, नमस्कार लवलीन।
नमस्कार धर्मवीर जी, सवाल पूछिए।
हमारे एक्सपर्ट को नमस्कार। मेरा सवाल यह है, मैं धर्मवीर धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ
जी।
मेरा ये पूछना है कि जो ई वेस्ट जो इतनी आजकल के टाइम में हमारे घरों में इकट्ठी हो जाती है, और हम जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके अगर और भी कई चीजें मशीन है, चीज है, तो ये हम लेके कबाड़ी को दे देते हैं, कबाड़ी ले जाके इसको उसको तोड़ता है, अलग अलग पार्ट्स करता है, उसको बेचता है। तो इसमें से जो ई वेस्ट का जो खतरनाक प्रभाव जो निकलता है वो कितना खतरनाक हमारे अनाज में निकलता है, क्योंकि वो खुलेआम इसको तोड़ते हैं, फेंकते हैं। तो इस चीज के बारे में, इसके बारे में क्या कर रहे हैं, इतना ई वेस्ट जो हमारा इकट्ठा हो गया है, प्लास्टिक को खतरनाक तो है ही है, ये अलग से इसके कितनी गैसें होती हैं ये भी।
जी जी धर्मवीर जी ठीक। डॉक्टर सुनील पांडे, ई कचरे के बारे में जो ये पूछ रहे हैं कि लैपटॉप या इस तरीके की चीजें जो हो जाती हैं, कितनी खतरनाक हैं?
ये काफी खतरनाक हैं। इसमें काफी एलिमेंट्स होते हैं, काफी कंपाउंड होते हैं, जैसे मरकरी हुआ, लेड हुआ, कैडमियम हुआ, ये जो है अगर ढंग से मैनेज नहीं किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। और ई वेस्ट जब तक हम घरों में रखा हुआ है तब तक तो ठीक है, ऐसा वेस्ट हमने घरों पे रखा हुआ है, लेकिन जब इनको रिसाइक्लर्स या जो इसमें से संसाधन निकालते हैं वो इनको तोड़ते हैं और जो है यूजफुल चीज निकाल के और जो यूजफुल नहीं उसको हम फेंक देते हैं
जी,
वो हानि पहुंचाता है।
तो काफी हानिकारक होता है स्वाति, जैसे
बिल्कुल
जी। क्यों जरूरी है वेस्ट मैनेजमेंट, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? जैसे अभी हमने बताया और हम घर में भी जानते हैं, सूखा कूड़ा है, गीला कूड़ा है, अलग अलग तरीके के कूड़े हैं, तो ये वातावरण में या मानव जीवन में कितने खतरनाक होते हैं और इसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है?
लवलीन जी, हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कचरे के बारे में और मैं ये कहना चाहूंगी कि कचरा कचरा इसलिए है क्योंकि हमने इसे कचरा बनाया है। जो आपका कचरा है वो शायद किसी और के लिए रिसोर्स है, वो उसको या तो रिसाइकल करके कुछ उसका बना सकता है या उसकी खाद बना सकता है या उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज सकता है, पर जब हमने उसे एक ही डस्टबिन में सब कुछ डाल दिया तो वो हमारे लिए वेस्ट है। कचरा प्रबंधन इसलिए जरूरी है आज के समय में क्योंकि हम एक प्लास्टिक की थैली की अगर बात करें या एक पैकेजिंग की बात करें, जो चिप्स या कुरकुरे का पैकेट है या कोई भी ऐसे
खाद्य सामग्री का या किसी भी,
बिल्कुल, अगर आपने उसे नॉर्मल कहीं पे फेंक दिया और उसे अच्छे से सेग्रीगेट करके नहीं रखा तो वो रिसाइकल नहीं हो पाएगा। अगर वो रिसाइकल नहीं हुआ तो वो या तो नदी में जाएगा या ड्रेन में जाएगा या किसी लैंडफिल साइट पे पहुंच जाएगा, जो जिसे कि हम कचरे के पहाड़ बोलते हैं सिंपल भाषा में, और वो हवा, पानी और हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है क्योंकि अगर आप उसे जलाएंगे प्लास्टिक को तो ऑफकोर्स जो उसमें जो केमिकल पदार्थ होते हैं वो आपके लिए टॉक्सिक है। वही चीज अगर सॉइल में चली गई तो वो माइक्रोप्लास्टिक में ब्रेक होके कंटामिनेट कर सकती है, वही चीज वापस आपके पास आएगी बहुत सालों बाद, और अगर वो पानी में चला गया तो वो माइक्रोप्लास्टिक बनके ऑफकोर्स जो अक्वेटिक जीव जंतु है उनको तो हानि पहुंचाएगा ही, पर जैसा कि हमने देखा है ऐसे बहुत से स्टडीज हैं जहां खून में प्लास्टिक पाई गई है, फीटस में प्लास्टिक पाया गया है, तो ये बहुत
स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है,
एनवायरमेंटल इशू है
जी। हरियाणा सिरसा से हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश चावला, उनका सवाल सुनते हैं जी। ओम प्रकाश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
हाँ नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला सिरसा हरियाणा से
जी।
तो मैं ये एक विनती करना चाहता हूँ, जिस प्रकार दूध की डेयरियां होती हैं मार्केट में
जी,
हेलो
जी जी आवाज आ रही है आपकी,
हाँ उसी प्रकार यदि हम एक ग्रीन डेयरी बनाएं, मान लो मेरे घर का कचरा है आपके घर का कचरा है, आपके घर में मिक्सी हो मेरे घर में मिक्सी हो
जी,
तो हम उसको जो है मिक्स करके उसका एक लिक्विड घोल बना करके एक जैसे टैंक होते हैं, ग्रीन डेयरी होगी, ग्रीन डेयरी पर हम उसको कुछ न कुछ हमें वो भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, हर घर का कचरा भी, हर घर का ग्रीन कचरा भी जो है वो हम धरती के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी, धरती के लिए भी होगा, जो हम बाहर लग रहे हैं
जी जी। स्वाति जी, एक अच्छा
बहुत
अच्छा सुझाव
अच्छा
ये दे रहे
उपाय है ये जी। और ऐसा बहुत से गांव में हो चुका है जहां पे ये प्रथा सालों से चली आ रही है कि अगर आप अपने घर में नहीं मैनेज कर सकते तो आप पड़ोसी के घर में दे दें और वहां पे ये ट्रीट हो जाए। उड़ीसा में, केरला में, कर्नाटका में, बहुत सारे पेरी अर्बन और गांव वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे ऐसी प्रैक्टिस सालों से चली आ रही है। तो ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने
जी। डॉक्टर सुनील मांझे, अभी स्वाति जी भी जैसे बात कर रही थी और थैलियां, हरे रंग की थैली, नीले रंग की थैली, सूखा कूड़ा, गीला कीड़ा की बात होती है कूड़े की, उसी तरीके से ब्राउन बैग भी है जिसमें हैज़र्डियस कूड़ा फेंके जाते हैं, उसको कैसे अलग करें, वो कितना खतरनाक होता है?
एक बार फिर से बताएं।
जैसे हरे और नीले थैलियों के अलावा आजकल ब्राउन बैग में भी का भी चलन चला है, जिसमें ज्यादा खतरनाक चीज डालने की बात की
जाती
है, हज़ार्डस
वेस्ट
जी, उसके बारे में,
हाउसहोल्ड हज़ार्डस वेस्ट बोलते हैं। एक्चुअली जैसा स्वाति जी ने बताया, बैटरी है, एग्जॉस्टिक बैटरी है
जी,
ट्यूबलाइट है, CFL है, और इस तरह की चीजें जो घर से निकलती है, पेंट कैन वगैरह है, और तो इस तरह की चीजों को जो है आइडियली क्या होता है कि इसको हम अलग से करके इसको हम नगर निगम को हमको दे देना चाहिए
जी,
और नगर निगम का कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए ये हर रीजन में, शहरों में तो नहीं लेकिन हर रीजन में हमारी हज़ार्डस वेस्ट डिस्पोजल साइट होती हैं
जी,
तो उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट करके जैसे शहर में जितना भी हज़ार्डस वेस्ट होता है उसको जो है हम वहां भेजें डिस्पोजल के लिए, और इसमें एक कैटेगरी सैनिटरी वेस्ट की भी है, सैनिटरी नैपकिन वगैरह
जी।
तो कुछ शहरों में हम लोगों ने देखा कि अगर ये बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल का कचरा ट्रीट करती हैं एजेंसीज, उनको अगर भेज दें तो ये इसको सफलतापूर्वक उसका निस्तारण कर पाती हैं
जी।
तो इस तरह से फिर हमको मैनेज करना पड़ेगा
जी। हरियाणा सिरसा से ही एक और श्रोता इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, राजेंद्र जी। राजेंद्र स्वागत है, सवाल पूछिए।
नमस्कार जी, मैं राजेंद्र, वो ये विशेषज्ञ से ये जानना था जी, प्लास्टिक है या कोई भी चीज है अगर जमीन में चल जाती है तो उसमें सेफ हो जाती है, 400 साल तक वो वैसे ही रहती है, तो हम ऐसी जगह भी पेड़ पौधे लगाते हैं जहाँ वहाँ जो पॉलिथीन है या प्रदूषण की कोई भी चीजें निकलती है तो वो बाहर रहने की वजह से अंदर ज्यादा सेफ रहती है, तो ये हमें तो देख के ही डर लगता है कि हमने खुद पेड़ पौधे ऐसे लगाते हैं जो मतलब सेफ निकलती है बिल्कुल।
बेसिकली ये प्लास्टिक की उसकी बात कर रहे हैं कि ये प्लास्टिक वेस्ट तो सालों साल तक रहता है और खतरनाक रहता है स्वास्थ्य के लिए।
बिल्कुल राजेंद्र जी, आपको करेक्ट करना चाहूंगी, 400-500 साल नहीं, 500 साल तक प्लास्टिक अगर कंटामिनेटेड जमीन में चला जाए तो रह सकता है, और इसलिए जो सिंगल यूज प्लास्टिक, जो अवॉइडेबल प्लास्टिक है, हमें एज सिटीजन्स कोशिश करनी चाहिए कि उसका कम से कम यूज करें और ऐसा प्लास्टिक यूज करें जिसका लाइफ ज्यादा है।
अभी हम थैलियों की भी बात कर रहे थे, नीली थैली, हरी थैली, ब्राउन थैली या प्लास्टिक की भी बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी हो जाता है स्वाति जी कि हम जिम्मेदार भी बने, जागरूक भी बने। सिर्फ जागरूक होने से नहीं काम चलेगा, जिम्मेदार हमें खुद बनना पड़ेगा, कूड़ा अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारा कूड़ा हमने अपने किचन का एक ही डस्टबिन में डाल दिया तो वो ज्यादा खतरनाक है।
बिल्कुल लवलीन जी, इसलिए सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है, कचरे को गीले, सूखे और डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, जैसा कि सुनील जी बता रहे थे, जिसके बारे में तीन भागों में हमें अलग अलग करना चाहिए। गीले में आपका ऑर्गेनिक वेस्ट आ गया, सूखे में आपका जो भी ड्राई वेस्ट है, प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, बॉटल्स एक्सेट्रा, और जो हजार्डस वेस्ट है जैसे कि बैटरी हो गई, आपके घर से निकलने वाले एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गए, पेंट हो गए, क्योंकि कचरा कचरा तभी है जब हम उसे सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम सेग्रीगेट करें तो वो किसी और के लिए रिसोर्स है, जैसे कि अगर आपके घर से बाहर निकलेगा तो जो कलेक्टर है वो उसे आगे प्रोसेसिंग के लिए ले जाएगा, गीले कचरे का खाद बन सकता है, सूखा रिसाइकल हो सकता है, और जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है वो एक अप्रोप्रिएट जगह में स्टोर हो सकता है ताकि वो एनवायरमेंट को कंटामिनेट ना करें। पर जिस समय हम इन तीनों चीजों को मिक्स कर दें तब वो कचरा है और उसका कुछ नहीं हो सकता, वो एक कूड़े के पहाड़ में जाएगा और सालों तक उस जमीन को कंटामिनेट करेगा, हवा को प्रदूषित करेगा, और ऑफकोर्स जो आसपास लोग रहते हैं उन मोहल्लों में, कूड़े के पहाड़ों के पास में, उनकी हेल्थ को भी सिवियरली अफेक्ट करेगा।
डॉक्टर सुनील पांडे, इसी चीज को आगे बढ़ाएं तो अपशिष्ट प्रबंधन का सामान्य तौर पर कचरे की मात्रा को कम करना और जो विस्तारित सामग्री है उसको रिसाइकिल या कम्पोस्ट करने के तरीके ढूंढना है। इसमें जो जलाया जाने वाला कचरा है या लैंडफिल में फेंके जाने वाले कचरे को कम करना भी, अभी हाल ही में गाजीपुर में आग लगी थी हमने देखा था, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं? साथ ही जो ये लैंडफिल के आसपास लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें?
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम लैंडफिल साइट पे डिस्पोजल करते हैं
जी,
तो सबसे पहले हमको इंश्योर करना चाहिए कि गीला कचरा जो है लैंडफिल साइट पे ना जाए, क्योंकि ये क्या होता है कि जब सालों साल जमीन में दबा रहता है तो इसमें से मीथेन गैस निकलने लगती है, और ये मीथेन गैस जो है जब ऊपर आती है तो इसमें आग लग जाती है, जैसा गाजीपुर लैंडफिल साइट पे हुआ
जी।
और उसके अलावा जो है बाकी कचरा जो हम लैंडफिल साइट पे फेंकते हैं तो जब बारिश आती है और पानी लैंडफिल साइट पे जाता है तो उसमें सारे विषाणु जो कचरे के अपशिष्ट हैं
जी,
वो घुल के नीचे चले जाते हैं और वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, और वो आसपास के लोग अगर वो पानी पीते हैं तो फिर वो उसके उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है
जी।
चौथा तीसरा ये है कि जो लैंडफिल पे जो बहुत सारी डस्ट जनरेट होती है, ट्रकों का मूवमेंट है, कचरे का निष्पादन है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है
जी।
लोकली भी जो है जो आसपास लोग रहते हैं उनको एयर पोल्यूशन झेलना पड़ता है, तो हमारी कोशिश, जैसा आपने बताया लवलीन जी, कोशिश ऐसी चाहिए कि कम से कम कचरा हम ऐसा रखें जो हमको लैंडफिल साइट पर ले जाके डंप करना पड़े
जी,
और मैक्सिमम हम जो है रिसोर्स रिकवरी करें उससे
जी,
जिससे कि जो है जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव न पड़े।
दिल्ली से केशव जुड़े हैं कार्यक्रम में। हेलो
हेलो मैम, नमस्ते, मैं केशव दिल्ली से बोल रहा हूँ, प्रजापति
जी। नमस्कार केशव, सवाल पूछिए।
सवाल मैम मेरा ये है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं घर में, लैपटॉप या फोन या फ्रिज जो भी है, तो वो खराब हो जाते हैं, तो उसमें से भी जो गैस निकलती है वो भी हमारे जीवन में वो डालती है प्रभावित।
जी केशव, ये एक और सवाल पहले पूछा जा चुका है ना इस बारे में,
दूसरा सवाल मैम ये, जैसे दिल्ली में तीन पहाड़ है, गाजीपुर, ओखला और बुराड़ी में, उनमें से जैसे हवा चलती है और ऑक्सीजन वो जैसे गैस निकलती है, वो भी हमारे जीवन के लिए।
जी डॉक्टर सुनील पांडे अभी इसी का जवाब दे रहे थे। स्वाति जी
बिल्कुल, केशव आपने बिल्कुल जो दो पॉइंट्स उठाए इनके जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं, पर जो हवा, जैसा कि डॉक्टर सुनील ने कहा, जैसे मीथेन गैस जो निकलती है और वो जब हवा के कांटेक्ट में आती है, तो उस वजह से जो दिल्ली में हम लैंडफिल फायर्स की बात के विषय में बात करते हैं वो होता है।
जी डॉक्टर सुनील पांडे, मीथेन गैस के बारे में आप बात कर रहे थे, जहरीली गैस या रेडियोधर्मी पदार्थ से जो होता है उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, कोई खास उपाय जो हम बताना चाहेंगे श्रोताओं को?
रेडियोधर्मी पदार्थ तो वैसे हमको अवॉइड करना चाहिए, म्यूनिसिपल कचरे में वो ना आए, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ जनरली जैसे हॉस्पिटल वगैरह में यूज करते हैं या कोई रिसर्च फैसिलिटी है वहां यूज करते हैं, तो भरसक कोशिश हमको ये करनी चाहिए कि म्यूनिसिपल कचरे में वो ना आए, और उसको जो है अलग से, उसके लिए अलग से एजेंसीज हैं जो रेडियोधर्मी पदार्थ को मैनेज करती हैं। इंडिया में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है
जी,
वो है, फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, जैसे ही हमको पता चले कि कोई हम रेडियोधर्मी पदार्थ के कांटेक्ट में है वो उनको कांटेक्ट करना चाहिए और वो उनको बोलना चाहिए कि आप इनको ले जाइए और मैनेज कीजिए।
स्वाति जी, विश्वविद्यालय स्कूल स्तर से अगर हम बात करें तो वेस्ट एंड रिसाइक्लिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वहां से कदम उठाएं, शायद बच्चों को या कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं उनको जागरूक जिम्मेदार बनाना शुरू करें तो एक अच्छी पहल हो सकती है।
बिल्कुल लवलीन जी, और ऐसे बहुत से शहर हैं जहां पे जो कचरा प्रबंधन की पहल थी वो स्कूल और विश्वविद्यालयों से ही शुरुआत की गई थी उनकी, क्योंकि जब आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं आप प्लास्टिक मत लाइए, आप कचरे को अलग अलग करिए, तो वो घर में जाके अपने पेरेंट्स को भी बताते हैं, तो वो एक जो चेन ऑफ रिएक्शन एंड उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत सक्सेसफुल रहता है अगर आप स्कूल्स और कॉलेजेस को टारगेट करें, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टोरीज हैं। एक
जी दरभंगा बिहार से मोहन पासवान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। जी मोहन नमस्कार, स्टूडियो में स्वागत है, सवाल पूछिए।
नमस्ते मैडम
जी,
नमस्ते, प्रणाम
जी। सवाल
मैडम, किसानों के पास सूखा और कचरा और गीला कचरा दोनों है, सूखे और गीले कचरे से खाद और बिजली दोनों तैयार किए जा सकते हैं, देश स्तर पर कचरा प्रबंधन के तहत किसानों के लिए क्या ये प्रबंधन किए गए हैं?
मोहन जी, आप स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानते होंगे जिसका ग्रामीण और अर्बन दो 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 भाग में वो है, और जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है वो किसानों को ग्राम पंचायत में किस तरह से बेहतर कचरा प्रबंधन हो उसको डायरेक्ट करता है, उसके मिशन मैंडेट्स हैं जो कि ग्राम पंचायतों को ब्लॉक्स डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो है हमारे देश में इसके सारे संसाधन पर्याप्त हैं, और जिस तरह शहरों में कचरा प्रबंधन की आवश्यकता है उसी तरह से गांव में भी बहुत जरूरत है इसकी।
डॉक्टर सुनील, भारत एक विकासशील देश है, ऐसे में जैसे अभी हम जिक्र कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र दोनों आवासीय और औद्योगिक कचरे के लिए निपटान के लिए क्या अलग अलग उपाय अपनाने चाहिए?
औद्योगिक कचरा, असल में औद्योगिक कचरा आप देखें तो उसका नियंत्रण जो है
जी
वो हमारे जो है स्टेट के प्रदूषण निवारण मंडल जो है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो करते हैं
जी,
और आवासीय कचरा जो है इसका जो है इसकी जिम्मेदारी जो है नगर निगम को दी गई है, तो आखिरी आवासीय कचरा जो है ये जनरली आवासन क्षेत्रों से जनरेट होता है, तो जो औद्योगिक कचरा है इसको जनरेट करने वाली इंडस्ट्रीज जो है
जी,
इनको जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है परमिशन लेनी पड़ती है और उनको बताना पड़ता है कि किस तरह का औद्योगिक कचरा ये जनरेट कर रहे हैं, वो विषालु है कि नहीं, रिसाइकलेबल है कि नहीं
जी,
जलाने वाला है कि नहीं, डिस्पोजेबल है कि नहीं, और उस हिसाब से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनको निर्देश देता है कि वो अपना कचरा किस तरह से मैनेज करें, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बराबर इस पर नजर भी रखता है कि वो इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं, वो नहीं मैनेज करते हैं तो उनके पास फाइन भी लगाता है
जी।
और आवासीय कचरे के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कैसा
कैसे करना
चाहिए, और जो है हाउस होल्ड अदालत से सब मैनेज करते हैं।
उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से असब कुमार का एक सवाल है, सुनते हैं। हेलो जी, असब स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
मैडम मेरा सवाल है स्थायी भविष्य के लिए आपसे, प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में समन्वय और उनकी भूमिका।
जी वही जो हम बात कर रहे हैं कि समन्वय हो, जागरूकता हो, जिम्मेदारी निभाए हर कोई, तभी हम अपना देश अपने आसपास स्वच्छ रख सकते हैं।
बिल्कुल। और असद जी, उसके अलावा जो कि हम कहते हैं कि किसी भी शहर को साफ रखने के लिए, गांव को साफ रखने के लिए तीन चीजों की बहुत जरूरत है, और ये हमने हर एक सक्सेस स्टोरी में देखा। एक तो पॉलिटिकल विल कि ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर हो, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव विल, आपके ग्राम पंचायत में जो सरपंच है या शहर में जो कमिश्नर है वो बहुत ज्यादा जागरूक है, प्रोएक्टिव है, और तीसरा रेजिडेंट्स या सिटीजन्स की भागीदारी कि वो भी जागरूक है और अपनी जो प्रेजेंट जो कचरा निपटाने की आदतें हैं उसको वो चेंज करना चाहते हैं और सेग्रीगेट करें, कचरे को अच्छे से अलग अलग करें। तो अगर ये तीनों चीजें हो जाएं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी गांव या शहर में कचरा प्रबंधन का कोई दिक्कत होगा।
डॉक्टर सुनील पांडे, एक और दिक्कत जो होती है, जो नदियों में पानी गिरता है वो गंदा पानी होता है, चाहे घर का हो चाहे रासायनिक फैक्ट्रियों का हो, उसको कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो क्योंकि नदियां भी आजकल हमारी बहुत दूषित हो रही हैं।
हाँ, क्योंकि नदियों का एक्चुअली प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है
जी,
जो हम अनट्रीटेड शहरी सीवेज भेजते हैं उसमें, और अनट्रीटेड औद्योगिक कचरा भेजते हैं, औद्योगिक वेस्ट वाटर भेजते हैं
जी।
तो उद्योगों को तो काफी सारे जो है सरकार ने कहा है कि अब आप जो है जीरो लिक्विड चार्ज बने, इनको अपने अपने आपको प्रेमाइस से कोई भी जो है कचरा बाहर नहीं भेजना है। तो उस तरह से जो है इस पे कंट्रोल किया जा सकता है कि आप नदियों में जो है कचरा ना जाने पड़े। और जहां तक सीवेज की आवासीय सीवेज की बात है
जी,
वहां हमको ज्यादा से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पड़ेंगे, और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारा जो है औद्योगिक आवासीय सीवेज जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट होने के बाद ही नदियों में जाए
जी,
तो जो है इस प्रदूषण से छुटकारा पाया
जाए। स्वाति जी, एक और बात, जो आजकल सोसाइटीज हैं वहां तो कचरा प्रबंधन मस्ट कर दिया गया है कि आपको अपना कचरे को खुद संभालना है और खुद उसको निपटार करना है, लेकिन जो कुछ आजकल अनऑथराइज बन रही है या आधा सेमी अर्बन वो हो रहा है, वहां पर इस तरीके की कोई चीज नहीं है। कोई भी कूड़ा उठा के थैली कहीं भी फेंक देता है, और प्लास्टिक की थैली में वो बड़ा खतरनाक है, तो उसके लिए भी कुछ ठोस उपाय है?
बिल्कुल, अनऑर्गेनाइज एरियाज में कचरा प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है, और ये बहुत कुछ म्यूनिसपैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो उन एरियाज में अपने सर्विसेज कलेक्शन के पहुंचा पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रेगुलर कलेक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से छोटे छोटे डंप साइट्स इन एरियाज में बन जाते हैं, और वो काफी हानिकारक हैं, क्योंकि वहां पे फिर गंदगी, मच्छर, बीमारियां, ये आम
पाया जाता है, ढेर भी बनने लगता है।
बिल्कुल बिल्कुल।
दिल्ली रानीखेड़ा से शिवराम सिंह कार्यक्रम में जुड़े हैं
जी। लवनी जी नमस्कार।
नमस्कार शिवराम जी, सवाल पूछिए।
मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जो प्लास्टिक है
जी,
जो पन्नी वाली प्लास्टिक है, जो बेग बल्ल कहने का मतलब गाय वगैरह खाती है, उनको भी नुकसान पहुंचाती, तो क्या इनको जो रोड बनाते हैं उसमें जैसे तारकोल के में मिक्स करके रोड में नहीं रिसाइकलिंग किया जा सकता?
जी बहुत अच्छी बात है ये, जैसे रिसाइकिलिंग के जरिए उपयोगी चीजें बनाई जाती है, कुछ स्थानों पर सड़कें भी रिसाइकिल के पदार्थों से बनाई गई हैं, तो इसको और प्रोत्साहित किया जा सकता।
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा शिवराम सिंह जी। प्लास्टिक रोड्स बहुत क्षेत्रों में और बहुत सारे स्टेट्स में बनाई जा चुकी है, पर एज एन एक्सपर्ट ये बताना चाहूंगी कि ये 100% सोल्यूशन नहीं है, और अगर एक प्लास्टिक की रोड बनती है तो 100 में से वो सिर्फ 8% पर किलोमीटर प्लास्टिक यूज हो सकता है
जी।
तो आप कितना रोड में डालेंगे ये सवाल मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी। तो वो एक 100% सोल्यूशन नहीं है, एक एंड सोल्यूशन है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ठीक है आपने प्लास्टिक का रोड बना दिया, पर लॉन्ग टर्म में उसके भी कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसपे अभी रिसर्च और स्टडीज काफी हो रही हैं
जी। एक है 3R है स्वाति जी, यानी रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकिल, ये योजना भी आजकल काफी चल रही है, इस बारे में थोड़ी जानकारी?
इसको आप लवलीन जी 3R, 5R, 7R अपनी हिसाब से कर सकते हैं। रिड्यूस सबसे पहला चीज कचरा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट आता है कि मैं एज अ सिटीजन या एज अ जनरेटर जो कि कचरा जनरेट कर रहा हूं अपना कंजम्पशन कम करूं, क्योंकि जिसे कि हम मिनिमलिज्म भी कहते हैं कि कैसे हम कम चीजों का उपयोग करें ताकि हम अपने एनवायरमेंट को बचा पाएं। अगर मैं कम प्लास्टिक यूज करूंगा तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, और ऐसा अगर हम सब करें तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है। रीयूज, जैसे कि आप अपना आप जैम की बोतल लेके आए कांच की और आपने उसमें से जैम पूरा कंफ्यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, और आप उस बोतल को वापस रीयूज कर रहे हैं। मे बी आप उसको एज स्टोरेज के लिए यूज कर रहे हैं, आप उसमें कुछ सामान डाल के उसको यूज कर रहे हैं। और रिसाइकल, अगर आप रीयूज नहीं कर सकते तो आप उसे एक ऐसे सिस्टम में पहुंचा दीजिए ताकि उसकी कोई चीज बन पाए। तो जैसे कि आपकी प्लास्टिक की बॉटल है, अगर वो रिसाइकल होती है, उसका जो दाना बनता है उससे जूते बनते हैं, टी शर्ट्स बनती हैं, स्पोर्ट्स का काफी सामान बनता है, तो अगर हम अपनी दिनचर्या में रिड्यूस रीयूज रिसाइकल अपनाएं तो शायद जो कचरे की दिक्कत है वो होना, पर उसके लिए हमें सबसे पहले अपने कचरे को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग भाग में रखना पड़ेगा।
वो सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो सारा मिलके फिर और खतरनाक हो जाता है। एक और चीज, अगर पेपरलेस काम को ज्यादा प्राथमिकता आजकल दी जा रही है, डिजिटल इकोनॉमी भी हो रही है, क्योंकि कागज के लिए इनके उत्पादों के निर्माण में भी कच्चे माल के लिए वनों की कटाई होती है, भारी मात्रा में ऊर्जा पानी का प्रयोग होता है, तो ये कितना सहायक से दूसरे सीधा सीधा हम डिजिटल जा रहे हैं, पेपरलेस कर रहे हैं, तो उससे भी काफी फर्क पड़ सकता है इस बार।
बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कागज का सोर्स पेड़ है, तो अगर हम जितना डिजिटल जाएंगे, जितना पेपरलेस इकोनॉमी पे जाएंगे, उतने हम अपने वृक्षों को बचा पाएंगे। और यही चीज हर एक रिसोर्स पे लागू होती है, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो स्टील हो, हर चीज बहुत सारा एनर्जी और मटेरियल कंज्यूम करके बनता है। तो जैसे ही जितना हम मिनिमाइज कर पाए अपना यूज, उतना हम पर्यावरण को बचा सकते हैं।
आज जैसे बार बार घूम फिर के बाद प्लास्टिक पे बहुत आ रही है स्वाति जी, चाहे प्लास्टिक के पैकेजिंग फूड्स हो या खाने की खाद्य सामग्री हो, हम लेके भी जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया हुआ है सरकार की पहल है, सरकार बार बार अनुरोध कर रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाओ, तो ये भी बहुत जरूरी है। हम कहीं जाएं तो अपना कपड़े का थैला लेके जाएं, और प्लास्टिक की थैली में जो या सब्जियां वगैरह देते हैं वो सब ना लाएं, वो भी काफी, क्योंकि सारा कुछ घूम के प्लास्टिक ही है जो बहुत खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
लवलीन जी, और ये मैं अपने सब श्रोताओं को बोलना चाहूंगी कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अगर आप अपने बैग में एक छोटा सा झोला डालें, वो कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं लेता, आप
कपड़े का झोला,
कपड़े का झोला प्लास्टिक का नहीं, आप एक चम्मच और एक छोटा सा ग्लास डाल लीजिए, और एक सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल की जगह आप नॉर्मल कोई भी बॉटल, स्टील की बॉटल डाल लीजिए, तो शायद आप जब बाहर निकलेंगे आपको बार बार हर चीज के लिए प्लास्टिक का यूज की चीजों का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे हानिकारक है, क्योंकि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट है 60% फ्रैक्शन उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक और पैकेजिंग वेस्ट का होता है, जो कि रिसाइक्लेबल नहीं है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है।
डॉक्टर सुनील पांडे, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपसे भी चाहेंगे कि प्लास्टिक से बचने के लिए और क्या क्या उपाय और क्या क्या सुझाव आप देना चाहेंगे?
प्लास्टिक से बचने के लिए खास करके जो स्वाति जी ने बताया सिंगल यूज प्लास्टिक हैं
जी,
तो जैसे थैलियां हैं उनके लिए तो कपड़े का थैला यूज कर सकते हैं। आजकल जैसे खाने पीने के लिए प्लास्टिक के जो कटलरी होते थे
जी,
उसमें एग्रो रेसिड्यूज को काफी यूज कर रहे हैं, जो खेती करते समय जो रेसिड्यू वेस्ट आता है
जी।
अभी कुछ कंपनियां हैं जैसे बगास, जो इससे गन्ने में जब जूस निकालते हैं तो उससे जो रेसिड्यू बचता है
जी,
उससे वो प्लेट्स और चम्मच और ये सब बना रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रहे हैं, कैसे जो है हम ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं प्लास्टिक की जगह
जी,
और जहां जहां हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक यूज होते थे वहां कैसे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं।
डॉक्टर सुनील पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगर हमारे इस कार्यक्रम से लोग इतनी प्रेरणा लेते हैं, सुझाव को मानते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट में। घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, साथ ही इंटरनेशनल सर्कुलर इकोनॉमी एक्सपर्ट स्वाति सिंह सांब्याल और टेरी के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील पांडे, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airstalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार 9:30 बजे फिर मिलेंगे। फिलहाल नमस्कार।